पिछली आयतों के बारे में क्लियर है माइंड? पिछली आयत यहां उस शख्स से अल्लाह सुभान व तआला, यानी अगली आयत जो हम पढ़ने लगे हैं, इसमें इशारा कुफार और मुशरिकीन की नहीं। हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो नॉन मुस्लिम सारे अच्छे काम करते देखते हैं और अच्छे कामों से मुतासिर होकर ये समझने लग कि इनके सारे काम जो हैं से हमें अच्छे लग रहे हैं, इसी तरह अल्लाह को भी अच्छे लगेंगे। तो क्या हकीकत है कुफर की और कुफर के साथ किए गए अमाल की, इसको हम देखेंगे आयत नंबर 39 से। वल्लज़ीन कफरू अमालुहुम कसराब, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके अमाल तो सराब की तरह हैं। मेराज इंग्लिश में बोलते हैं, कैसा है वो? बिकियतिन, एक मैदान में चटियल। यहसबुहु ज़मआनु माअन, जिसे प्यासा शख्स पानी समझता है। अगर आप देखिए तो लफ्जों में कुछ लफ्ज कफरु तो हम जानते हैं आमाल अमल की जमा, का सराब, यहाँ लफ्ज सराब है, काफ उसके साथ प्लस है मानित। सराब कहते हैं पानी दिखे लेकिन वो ना हो। अरबी जुबान में शराब लिखें पहले आप लफ्ज, शराब कहते हैं पीने की चीज, ये उर्दू वाली शराब नहीं जो हम शराब को लीकर या वाइन की सूरत में कहते हैं, हर पीने वाली चीज शराब है, जैसे शरबत, ठीक है? तो शराब है पीने की चीज, तो शराब है पानी ना हो, ऑपोजिट, यानी शीन और सीन का फर्क है। और असल में इससे मुराद वो पानी की तरह दिखती हुई लहरें हैं जो दूर से गर्मी की वजह से सड़क पे दिखती है। अभी आपको अरब इलाकों में, यही मुल्क में जून जुलाई में सफर करने का मौका मिला हो तो आपको दूर चमकती रेत की तरह से पानी दिखता है सड़क पे, आप सोचते हैं कि पानी है, जब आप करीब जाते हैं तो वहां नहीं दिखता लेकिन उससे दूर दिखता है। तो इससे इशारा है कि वो नेकियां जो बजाहर दिखती हैं लेकिन में वो नहीं है, ठीक है? चमकती रेत के कमानी इसमें आता है और फरेब और धोखे के लिए बुल मिसल भी है कि आपकी मिसाल शराब जैसी है। बिकियत किया है ना, इसमें बा अलग है और किया अलग है, बी मैंने साथ किया, किया कहते हैं रियल मैदान को, वही जैसे कि अभी हम बात करें कि दूर तक कुछ नजर आए। होता कि यक्सबहु गुमान कर, यानी उस शराब को देखकर गुमान करता है कौन? अज़म कहते हैं ऐसे को, हज सॉरी रोजा ने दो बार याद की थी रमजान में कि ज़हब ज़मा वबतलतिल उरूक व सबतल अज्र इंशाल्लाह, तो वो ज़मा सही ज़मा प्यास 30%, यानी एक प्यासा आदमी दूर से उस चमकती हुई रेत को पानी समझता है, खुश हो जाता होगा कि चलो पानी आ रहा है। फिर क्या हुआ? हत्ता इज़ा जाहु, फिर यहां पहुंच गया उसके पास, हु क्या है? सरा, उस सरा के पास पहुंच गया, लम यजी कुछ भी ना पाया, है ही कुछ नहीं था तो दिखा कैसे, जबकि पा लिया उसने उस अल्लाह को, अलबत्ता इसने के पास पा लिया, हिसाब बहु पूरा पूरा उसका हिसाब, हिसाब अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब देने वाला है। बहुत ही ज्यादा दिल को हिला देने वाली मिसाल है। ऊपर हमने आयते नूर में एक सच मोमिन की मिसाल पढ़ी कि किस उसका दिल ईमान सा डूबा होता है और ईमान उसके अमल से, कॉल से, फेल से, रवैयों से छिड़कता है। अब दो आयतों में अगली आई है पढ़ और इससे अगली, इसमें दो तमसीलें हैं। ये उन लोगों की कहानी है जिनके दिल ईमान की रोशनी से खाली है, काले दिल अंधेरों वाले, मगर अपने दिल की तसल्ली और मिनान के लिए नेकी के मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। और ये इंसान की मजबूरी है, जब वो बहुत काम करता है ना तो उसको जरूरत नहीं होती ये साबित कराने की कि मैं बहुत सिंसियर हूं और मैं बहुत काम कर सकता हूं, वो काम में तवज्जो देता है। इसके बरक्स जब एक इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, जो उसे एक्सपेक्टेड चीजें वो नहीं करता ना, तो फिर मौका पे मौका वो अपनी बात को इस तरह पेश करता है कि मजबूरी और एक्चुअली और दिल बहुत चाहता है और दिल में बहुत है लाइक दिस, इस तरह की कैफियत होती है। एक इंसान की मजबूरी है। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि जिस दौर में हम मुसलमान वाकई काम करते थे, तो कोई नातों में बैठ के अल्लाह के नबी के साथ इतने बड़े बड़े अहदों पे मान नहीं बांधता था जो आज रबीउल अव्वल में हम बांधते हैं। फिर क्या हुआ जब हमने काम छोड़ा, तो दिल में गिल्ट तो था ही ना कि हाय हाय कुछ नहीं करते, हमने मिलाद के नाम पे और रस्म के नाम पे की मिसाल होती है। दिल की तसल्ली और जमीर के इत्मीनान के लिए नेकी के मुख्तलिफ काम अंजाम देता है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ इन मिसालों में हमें बताएंगे, मुझे ऐसे लोगों की नेकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सूरत अल बकरा की आयत 177, जिसका नाम आयते दिल था जी, उसमें हम पढ़ चुके थे कि असल नेकी जो है वो कहाँ से शुरू होती है। लैस अल बिर अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक वल मग़रिब वलाकिन अल बिर मन आमन बिल्ला, मन आमन बिल्ला से अकाउंट खुलता है अल्लाह के यहाँ कबूलियत का, वल यौमिल आखिर आखरत पर ईमान, वल मलाइका, और फिर उसके आगे उसकी जो तफसील थी, तो गोया कि काफिर ने बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए टेस्ट देने शुरू कर दिए, बगैर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए, घर में बैठकर पेपरों की तैयारी करने लगा और गुमान किया कि मेरे ये पेपर मुझे डॉक्टर बना देंगे। कभी ऐसा हुआ? तो एक डॉक्टर नहीं बनता बगैर किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए हुए, तो एक मुसलमान कैसे मुसलमान बन सकता है? कल नेकी उसको मिलेगी क्या? जिसने आखरत पे यकीन ही नहीं रखा उसको आखरत में मिले कोई क्यों? तो लिहाजा अल्लाह सुबहाना तला कहते हैं पहली मिसाल में कि ऐसे लोगों की नेकियां कयामत के दिन शराब की तरह होगी, दूर दूर से उनको नेकियां नजर आ रही होंगी, लेकिन जब करीब जाएंगे तो वहां अल्लाह खड़ा होगा हिसाब लेने के लिए। और रिवायात में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि क्यामत के दिन ऐसे लोगों को दूर से उनके अमल दिखेंगे, वो खुशी खुशी भागेंगे उन अमलों की तरफ, मिल गई नेकियां मिल गई, भागते जाएंगे, फिर जब वो करीब पहुंचेंगे तो वो नेकियां उनसे दूर चली जाएंगी, जब दूर चली जाएंगी तो वो और भागेंगे और भागेंगे, और हत्ता के थक हार के जब अब आगे और चलने की ताकत नहीं रही तो गिर पड़ेंगे, सर उठाएंगे तो फिर उसके बाद अल्लाह को वहां पाएंगे। वजदल्लाहु फवफ्फाहु हिसाबहु। कभी भी किसी की ऐसी नेकियों से मुतासिर ना हो जो सिर्फ चमक दमक वाली हो, अल्लाह पे तो ईमान नहीं। वो दरख्त को भी याद कर लीजिए, जाहिर नेकियां करना ऐसा है कि बगैर जड़ों के और बगैर तने के नेकियों का दरख्त एक उगाना चाहे तो गिर जाएगा वो नीचे। तो असल चीज अल्लाह की मार्फत है, अल्लाह नूरु समावाती वलर्द, जिसने रब को पा लिया थोड़ी सी नेकियां भी काम आ जाएंगी। रब को ना पाकर या पाकर ना मानने वाले की बहुत बड़ी बड़ी नेकियां क्यामत के दिन जाया हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। लिहाजा अल्लाह तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। चलिए ये बात तो हो गई, अब एक और मिसाल लेते हैं, फिर दोनों पे इकट्ठी बात थोड़ी सी कर लेंगे। अगली आयत 40, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्ज, या मानिंद अंधेरों के गहरे दरिया में। ठीक है, जुलुमातुन जो है जुलुमतुन की जमा मुअन्नस है, फिल बहरी दरिया के लिए भी आता है और समंदर के लिए भी आता है। लुज्जी कहते हैं बहुत गहरे को, लज्जा या लुज्जू बहुत पानी, गहराई के मानों में। ठीक है, लज्जाजत का लफ्ज आपने उर्दू में सुना, वो भी यही है। क्या होता है? किसी की बहुत मिन्नतें करनी, मिन्नत समाजत और लजाजत की। ठीक है, तो लुज्जी में डीप डाउन का मानी आता है, गहरा पानी था। इमेजिन करें कभी अगर शाम के वक्त आप ओशन पे गए हो तो उसको जिम्मे ले आए, समंदर है और उसके ऊपर अंधेरे हैं, मौज उन मिन फौक ही मौज, एक मौज के ऊपर दूसरी मौज है, वेव्स टाइड्स दरिया की नहर, जहर की मौजें अमूमन समंदर में ही होती हैं, तो यहाँ बाहर से मुराद फिर समंदर है, गहरा समंदर है, छा लिया उसको मौजों ने, एक मौज अभी हटती नहीं तो दूसरी आ जाती है, बल्कि मिन फौक ही सहाब, इसके ऊपर बादलों के भी अंधेरे हैं। क्लाउड्स काले होते हैं ना, तो अंधेरा होता है, यानी पहले समंदर के अंधेरे, फिर मौजों के अंधेरे, फिर उस पे दूसरी मौज का अंधेरा, और उसके बाद फिर बादलों के अंधेरे। जुलुमात उम्बा दुहा फौकबात, अंधेरे ही अंधेरे एक के ऊपर एक के, इतने अंधेरे हैं वहां कि बिल्कुल डार्कनेस हो गई। हद तक इजा खरज यदहू, यहां तक कि जब उसने अपना हाथ निकाला, लम यकद यराहा, नहीं था मुमकिन के देख सके उसको, इतना अंधेरा आ गया वहां
कि वहां जब उसने अपना हाथ उठाया, खोला, देखा तो उसको उसमें से कुछ भी नहीं मिला, है ही कुछ नहीं। देखिए लफ्ज क्या आना चाहिए था, लम यरा, लेकिन यहाँ क्या है, लम यकद यरा, देख ही नहीं पा रहा, यानी मुबालगा है। कार यकूद कौद करीब के लिए आता है, तो कहा कि मुमकिन ही नहीं कि अपना हाथ देख सके, कोई और चीज क्या देखेगा, क्योंकि हाथ तो इंसान के सबसे करीब होता है ना, उसको आप देख ही लेते हैं, लेकिन इतने अंधेरे में नहीं देख सका। तो बात क्या है कि वह मन लम या चलिल्लाहु लहू नूरन, और वो शख्स जिसके लिए अल्लाह ही को रोशनी ना करे, तो फमा लहू मिन नूर, तो उसके लिए तो फिर कोई नूर नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। वो समझ ले कि वो उसके अमल जिंदगी भर के जाया हो गए। क्या पता चला इस आयत में, पहली आयत में शराब, खोटी नेकियां, ना कबूल होने वाली नेकियां क्यामत के दिन शराब की सूरत में होंगी, अंधेरों की सूरत में होंगी, और यहां दूसरी आयत में अंधेरों पे अंधेरे। अब ये कौन से अंधेरे हैं? ख्वाहिशों के अंधेरे, बदनीयती के अंधेरे, कुफर के अंधेरे, दुनिया परस्ती के अंधेरे। इस तरह से एक इंसान ऐसी चीजों में खो जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं, मैं देखूं तो किधर जाऊं, देखो मैं क्या काम करूं। ऐसे लोग जो होते हैं कयामत के दिन बहुत ज्यादा शर्मसारी महसूस करेंगे। दिल में मुनाफकत है, अंदर मुनाफकत है, ना नूरे फितरत बाकी रहा और नूरे वही रही, और हर चीज को उन्होंने जाया कर दिया। हर चीज अंधेरे, बात नहीं अंधेरे। अब देखिए अंधेरा भी दो किस्म का होता है, पीछे हमने नूर की भी दो किस्में पढ़ी थी ना, अंधेरे की भी दो किस्में होती हैं। एक होता है खारजी अंधेरा और एक होता है बातनी अंधेरा। खारजी अंधेरा क्या है, हम ये सारी विंडोज के आगे ब्लैक कर्टन लगा दें, सूरज की रोशनी अंदर आने ना दें और कमरे में खूब अंधेरा हो जाए, वो अंधेरा जो हम रात को महसूस करते हैं, सारी लाइटें बंद कर दें, आपको रात के वक्त खारजी अंधेरा दिख जाएगा। ये सबको दिखता है, और अल्लाह ताला का असूल इस मामले में मोमिन काफिर सबके लिए एक जैसा है। इसके बरक्स एक और अंधेरा होता है जिसको बातनी अंधेरा कहते हैं, और बातनी अंधेरा कुफर है, मुनाफ़िक़ है। मोमिन का दिल नौरानी होता है, कमिश्का दिल, काफिर का दिल अंधेरों वाला होता है। इसलिए आप देखिए कि कुफार को अंधेरी जगह अच्छी लगती है, नाइट क्लब्स का माहौल देख लीजिए, पार्टीज का माहौल देख लीजिए, मिड नाइट डिनर का नाम आप सुन लीजिए, रात के वक्तों में जाके याशी के सामान ढूंढना, इंतजार करना कि सब सो जाएं तो फिर हम अपने काम पे निकलें। चोरों को अंधेरा अच्छा लगता है, रात के अंदर वो काम कर लेते हैं जो दिन में नहीं करते। तो यहाँ बता दिया कि जब दिल की आंखें बंद हो जाती हैं तो अल्लाह के हुक्मों पे अमल करना मुमकिन नहीं लगता, फिर भी कोई अमल कर लो तो कयामत के दिन वो अमल अंधेरों में खो जाएंगे। जब दिल अंधेरे में है तो अमलों में नूर कहाँ से आ सकता है? याद रखिए, दो अंधेरे बहुत ज्यादा इंसान को नुकसान देते हैं, ख्वाहिशात नफ्स का अंधेरा और मुनाफकत का अंधेरा। मुनाफकत क्या होती है, अगली आयतों में हम पढ़ेंगे, लेकिन दिल और जुबान का हम आहंग ना होना, तो कुफर एकदम कुफर पे नहीं जाता। अगर आप वाइट को ब्लैक करना चाहते हैं ना, तो बीच में ग्रे शेड जरूर आएगा। वाइट अल्लाह नूर समावाती मसल नूर ही का मिश्कात, सफेद दिल मोमिन का दिल है, डार्क ब्लैक किसका दिल है, काफिर का दिल है, बीच में जो ग्रे के लाइट से डार्क के शेड्स है ना, ये मुनाफिक के शेड्स है। ग्रे एरिया से गुजर कर ही ब्लैक होता है, इसी तरह से निफाक से गुजर कर कुफर पैदा होता है। ये लिख ले, बार बार की मुनाफकत इंसान को काफिर बना देती है, एकदम नहीं कि आप काफिर से मुनाफिक हो गए। ठीक है, तो गोया कि यहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया कि आखरत से गाफिल होकर सिर्फ दुनिया की तरक्की करना अल्लाह के नजदीक ये शराब है। जब दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील होती है, अगली चीज नजर आती है। आज दुनिया में भी देखिए शराब नहीं है, एक कामयाबी के पीछे भागे, अभी पूरी नहीं मिली तो वो दूर दिखती है उससे अगली, अब इतना कर ले, अब इसके बाद ये कर ले, अब ये कर ले, और चाहे वो कैरियर बिल्डिंग क्यों ना हो, या जॉब फाइंडिंग क्यों ना हो, या स्टडीज क्यों ना हो, जो रैंक और जो डिग्री मिल जाती है वो छोटी लगती है, उससे आगे बढ़ते हैं। और बास दफा हमारे ही बच्चे इन्हीं शराब के पीछे भागते भागते नमाज दीन रोजे से दूर होते हैं कि बाबा जद अल्लाह इंदहू, अल्लाह आ जाता, मौत आ जाती है, अचानक डेथ हो जाती है। कल किसी के यंग बच्चे की डेथ की खबर सुनी, तो मैं ये सोच रही थी कि किधर गई सारी पढ़ाई, किधर गया ये शराब हो गया। सारी जिंदगी दुनिया बनाते रहे, एक कारोबारी को ले लीजिए, अल्लाह से दूर है अगर, अल्लाह वाला है तो फिर तो आपने पीछे सुन ली है बातें कि जिनके दिल मस्जिदों में अटके हुए वो तो कामयाब ताजिर है, वो तो इंशाल्लाह सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा जो अमानतदारी के साथ तिजारत करता है। लेकिन खुदा फरामोशी और अल्लाह की याद से दूर होकर दुनिया मिले तो वो शराब है। आपकी भी मेरी भी, मत सोचिए कि ये दुनिया में पढ़ने वाले और जॉब करने वाले और कारोबार करने वाले मर्दों की कहानी, ये मेरी और आपकी भी। आप सारा दिन घर के काम खत्म करती रहे, बस ये कर लो फिर अगला, फिर वो कर लो फिर अगला, शराब है। अगर 5 नमाजें नहीं है तो, अगर फराइज छोड़े, अगर अपना दीन का कोई काम छोड़ा है, कोई कमिटमेंट छोड़ी है, क्लास छोड़ के आप जाए ढूंढे दुनिया, वल्लाह ही कसम खा के कह सकती हूँ 2 घंटे की क्लास आप छोड़ेंगे, अल्लाह आपको 2 घंटे बाजार में ख्वार करके वो चीज देगा जो आपको जाते ही मिल जानी थी। इसलिए के फवफा हो हिसाब हो, मैं और आप तो नहीं मुहासबा कर सकते अपना या किसी का, वो जात बैठी हुई है, आना पाई करके बैठती है। सिर्फ बंदगी और गुलामी ये है कि अल्लाह मैं तो हाथ डाल के तेरे आगे आ गई, अब तू मेरे मामले कर दे, अब तू मेरे मामलों को आसान कर दे। जितना आप अल्लाह पे अपने मामले डालेंगे आपके काम आसान होंगे। और आप कहते हैं ना मैं करूंगी, तो फिर मिसाल वही है कि छोटा बच्चा है, आप कहते हैं लो बेटा मैं ही कर दूं तुम्हारा काम, वो कहता नहीं मैं खुद करूंगा, जिद करता है, तो फिर देखते हैं फर्क। आपने जो काम 2-4 मिनट में कर देना तो वो आधा घंटा लगा के करता है और आधा चीजें गिराता है, आधी जलाता है, आधी जाया करता है। उसके हाथ छोटे हैं, एक उसको शौक है खुद करने का, मैं खुद खाऊंगा, खाने से ज्यादा नीचे डाइनिंग टेबल पे चीजें फेंकी होती हैं, मैं खुद फेंकूंगा, मैं खुद करूंगा। तो हम भी बच्चे ही हैं अभी, हम सोचते हैं हम अपने काम कर लेंगे, किसमें जरूरत है, किसमें ताकत है। बहुत ही खूबसूरत कल मैंने हदीस से पढ़ी, तो अभी मौका नहीं है, लेकिन उसका खुलासा ये था कि अल्लाह से हटके दुनिया अपनी बनाना ये भी शराब है। फिर सर में दर्द होती है, फिर टांगों में दर्द होता है, फिर काम नहीं होता, फिर ट्रैफिक में फंसते हैं, फिर हम न जाने किधर। पक्का वो खाना कभी जले ना तो सोचा करें का शराब, पकी पकी हंडिया क्यों गई, खुआ हुआ या काम खराब हो गया, फिर तो सब काम हो गए बस एक रह गया। जिस दिन वो एक रह गया ना वहां का शराब लिख लीजिएगा, ये कोई ना कोई सजा मिली है, और अल्लाह का शुक्र करें ये सजा मिल जाए। इसलिए एक इंसान को दुनिया में अल्लाह के साथ मामला रखना चाहिए। परफेक्शन के नाम पर हम दुनिया के पीछे मरते हैं, और ये दुनिया शराब है। ये पूरे स्टोर्स, ये पूरी मॉल सिस्टम और जो दुनिया की इंडस्ट्री है, ये शराब है, वल्लाह ही ये शराब है। पिछली जो आयतें आपको बताई नूर वाली और रोशनी वाली और लालटेन वाली, तो मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया। अभी रिसेंटली हमने जब नॉर्वे का ट्रिप किया तो उसके अंदर हमने एक ट्रिप रखा था स्टूडेंट्स के साथ, तो एक ऐसी फैक्ट्री में हम गए कि जहाँ ग्लास बनता है, और वो ग्लास कैसे कि वहां हैंडमेड ग्लास बनते हैं, अगर उसकी तस्वीरें भी आप देखना चाहें तो मेरा लिए उनकी वेबसाइट पर कहीं ना कहीं डली होगी। अपनी आंखों से मैंने ग्लास बनता देखा, कैसे एक रेत का गोला मट्टी का, फिर आग की तरह उसको गर्म करते हैं, फिर सांचों में डालते हैं, फिर उसकी पॉलिश करते हैं, और 5-10 मिनट में एक ग्लास ऐसा छन छन करता हुआ बन जाता है। तो मैं जाते आपको पढ़ा रही थी तो मुझे वो सारी वीडियो याद आ रही थी, और वो आंखों से हमने देखा। और आपको भी वो मौका देते हैं कि आप ऐसे दें और आप खुद भी बनाए, और वो ग्लास भी कितने कीमती ग्लास होते हैं क्योंकि ये हैंडमेड ग्लास है। और उसमें कई दफा मैं देख रही थी कि इस बंदे का हाथ जरा सी आग देखी ना, जो आग एकदम इतना इतना सा वो सिलिकॉन सा लेते हैं और उसको किसी डिवाइड निकालते हैं ना, तो वो आग की तरह सुरख जल रहा होता है, ये क्या बना है। फिर उसको फौरन ले जाकर पीछे इधर एक लिक्विड सा था उसमें वो डालते हैं, तो वहां जाके वो यूं जितना, फिर उसके बाद साथ ही एक शेप रखी हुई, उस शेप के अंदर डालते हैं कि जैसी शेप करनी है, फिर उसको 2-3 मिनट के और प्रोसेस बिल्कुल चमकता, फिर एक दफा आके तरह उसकी कटिंग करते हैं, फिर सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था। बिल्कुल ये आयतें मुझे वैसी ही दिखती है कि जब दुनिया में इंसान खो जाता है ना, अंधेरों में खो जाता है, तो नूर के असल सोर्स अल्लाह की जात से दूर होता है। जब कनेक्शन कट गया, बिजली कट गई, तो घर में अंधेरे ही होंगे ना, तो अल्लाह से कटा हुआ ताल्लुक दुनिया में खैर पा ही नहीं सकता। आपको अपनी मनपसंद चीज मिल भी जाएगी, आपका काम मनोन हो भी गया जिसके लिए आपने अल्लाह के काम को छोड़ा था, आपके दिल को खुशी नहीं होगी। और आप एक चीज नोट करें ना, तो मैं बार बार आयात मुबैना सूरज नूर है, तो अल्लाह कहते हैं मैनिफेस्ट ट्रुथ, क्लियर आते नूर की आते, किसी हुक्म में किसी किस्म का शक अगर तुम्हारे दिल में आता है तो उसको पीछे कर दो, तो फिर तुम देखो कि तुम्हारे काम कैसे हैं। और यकीन कीजिए कि यह वल्लज़ीना कफरू की बात है, लेकिन कुफर के दर्जों में कहीं ना कहीं तो हम अपने आप को भी ला सकते हैं। हर बंदा खुद को ही देख ले कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो यकीन करें कि हम अपने आप को कहीं दूर नहीं पाएंगे। तो सारी बात का खुलासा क्या है इसकी अभी तक की, कि अल्लाह से भाग के कहीं नहीं जा सकते। पहले रब को मानो, फिर उसकी बात मानो। आप रब की बात भी मानते रहे, पांच नमाजें कोई शख्स पढ़े दिन में, रोजे भी रखे, हज भी करे, सब कुछ करे, लेकिन कह के ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता, चले ये भी कह देता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता, अल्लाह तआला कहता है कसराब, पीछे हो जाओ, मुझे तुम्हारी नेकियों की कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुमने अपनी जिंदगी को जाया कर दिया, और इसी शराब और धोखे का नाम दुनिया है। ये दुनिया फरेब है, ये दजल है, इसके अंदर पाकर भी इंसान खोता है, क्योंकि वलअस्रिन इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान नुकसान में, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, सिवाय उसके जो ईमान लाकर अमल साले करेंगे, अदरवाइज सब खराबी है। फिर एक और चीज आपने यहां नोट की है कि नहीं की है, उसको भी नोट कर लेते हैं। आप देखिए कि जो ये बात की गई कि जो भी काम करते हैं वो उनके वो सारे के सारे काम जो हैं वो धोखा है और उसको फायदा नहीं मिलता, इससे क्या पता चलता है कि एक काफिर कुछ अच्छे काम करता है और एक अच्छे काम नहीं करता। और अमूमन देखिए हमें कुफार के जो अच्छे काम दिखते हैं ना, वो चैरिटी है या इनका डिसिप्लिन है या हमें इनका अदल और इंसाफ दिखता है। सवाल पैदा होता है, बड़ा अहम सवाल है, कि एक काफिर है जो है भी काफिर, शराबी भी है, जानी भी है, पापी भी है, हर उसमें ऐब है, लोगों को सताता भी, अच्छे काम भी नहीं करता, इसके बरक्स एक दूसरा काफिर है, वो सिर्फ काफिर है लेकिन अखलाकी तौर पर अच्छा है, बद किरदार नहीं है, इंसानियत का फायदा भी लेता देता है, क्या इन दोनों का एक ही दर्जा? गो के पहले शख्स की जो मिसाल दूसरे से ली जिसने नेकिया की, उसकी नेकियां आखिरत में कुछ नहीं है, लम यजद कुछ नहीं पाएगा, लेकिन ये दूसरे को उसकी नेकियों की वजह से दुनिया में सुकून मिल जाएगा। एक जुमला लिख लें, मोमिन की नेकियों को अल्लाह अक्सर आखिरत पे डाल देता है कि वहां जाके चुकाऊंगा, डिलीवरी वहां होगी, काफिर की नेकियों को दुनिया में हिसाब बराबर कर देता है। अल्लाह अलग याद रखे, वो मालिक है, अल हकम है, अपने बंदों पे नजर रखता है, लतीफ है, अल खबीर है, वो कैसे जुल्म करता है? आप कहते हैं हाय इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, बिल्कुल बनाया, क्या इसको फायदा नहीं मिलेगा? हाँ ये तो बड़ा जुल्म है, मिलेगा फायदा, कहाँ मिलेगा? इस दुनिया में मिलेगा, वो इस दुनिया में भी पीसफुल होंगे, उनकी जिंदगी सुकून वाली होगी। और बस दफा आप कभी इन लोगों से क्लोज होकर बैठ के देखे तो इन लोगों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इनके अंदर बाज जगह फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इनके अंदर भी अभी हया है, खास तौर पर जो इनकी ओल्ड लेडीज कभी सफर में साथ बैठती हैं तो उनको देख के बिल्कुल अपनी नानियां दादियां लगती हैं, वो भी इस बात पे कुड़ती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो माँ बाप का ख्याल नहीं रखते और हमारे बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहनते और दिस एंड दैट, उनकी चीजें फर्क है हमसे, लेकिन उनमें अर्ज मौजूद है। तो आप कह लीजिए कि जैसे दिन ब दिन मुसलमान बिगड़ते जा रहे हैं ना, इसी तरह दिन ब दिन काफिर भी बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह पहले दुनिया में मुसलमान अच्छे थे, उनकी दुनिया अच्छी थी, इसी तरह माजी के मुसलमान भी अच्छे, काफिर भी अच्छे थे, अल्लाह के साथ उनका मामला तो आखिरत के साथ जाके बिगड़ना था ना, दुनिया में सुकून में थे, आज तो मईशत दंका की सूरत में हर तरह के हालात बन गए। तो लिहाजा सारी बात का खुलासा यह है कि अल्लाह को ऐसी नेकियों की कोई जरूरत नहीं है कि जिसके अंदर असल मोहब्बत ना हो। अब यहां देखिए कुफर और नूर का, सॉरी रोशनी और अंधेरे का एक खूबसूरत अमल कर जाता। अब सबक की जो बाकी आयतें रह गई हैं, मुझे और आपको कायनात के चंद उस्तादों से मिलाया जाएगा, मिसाल वही चल रही है अभी पीछे, मोमिन काफिर आगे मुनाफिक की भी बात होगी, कि इस कायनात में अल्लाह का कानून देखो कि काफिर जिसकी अकल भी है, हाथ भी है, पांव भी है, सब कुछ है, दिमाग भी है उसमें, उसके तो बड़े बड़े अमल आया, जबकि बेअकल, ना समझ परिंदे, जानवर और कुछ ऐसी चीजें कि जिनको हम कह सकते हैं कि गैर आकिल चीजें हैं, समझ नहीं है। जानवर तो हैं लेकिन समझ इतनी नहीं है। वो इस कायनात में अपने रब को कैसे पहचानते हैं? मुख्तसिर सी बात कि रब की पहचान तो परिंदों के भी दिमागों में है, तो तुम इतने बड़े इंसान बनकर अपने रब को क्यों नहीं पहचान सके? इसलिए कि तुम्हारी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, तुमने उस चीज को पाने की कोशिश नहीं की। तो आइए एक एक मिसाल जहां तक पूरी होगी वहां तक पढ़ने के बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला उसको देखेंगे। और वो क्या है, आयत नंबर 41, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाती वल, क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ही की तस्बीह करता है हर एक जो आसमानों और जमीन में है। अब वो कौन है? सब हैं, खास तौर पे वत्तोईरू और परिंदे भी। क्या ये जमीन आसमान में नहीं थे? लेकिन यहां उनका बतौर खास जिक्र करके उनका अब जिक्र आगे चुके आने वाला है। क्या है इनकी सिफात? आप 1, 2, 3 या ABC करके आयत पे लिख लीजिए तो आसानी हो जाएगी। नंबर 1, साफात, सफे बनाए हुए हैं, और अपने एंगल से लिख लीजिए पर खोले हुए हैं। परिंदों की पहली सिफत जो इन आयात में आई, सफे बनाकर चलते और उड़ते हैं। और सफे अमूमन इनकी परों की सूरत में होती हैं, पर से पर मिलाते हैं तो सब सीधी हो जाती है। नंबर 2, कुल्लुन कद अलिम सलातहु, हर एक इनमें से जानता है अपनी नमाज का तरीका। यानी इनको भी पता है कि फजर का वक्त कब है, जोहर कब है। जो शरीयत अल्लाह ने इनको दी हुई है, ये उस वक्त कुछ और नहीं करने लग जाते इस सोच में कि अभी दुनिया के काम बहुत है। तीसरी, व तस्बीहहु, और इनको अपनी तस्बीह का तरीका भी पता है कि अल्लाह की सिर्फ कौन जुबानी तस्बीह नहीं करनी बल्कि इस दुनिया में भी अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करना है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह को इसकी खूब खबर है। साथ इसके आगे आयत को पूरा कर दिया, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी, अल्लाह ही की है बादशाही आसमानों और जमीन में, व इलल्लाहिल मसीर, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। यहाँ परिंदों की बात है। अब देखिए कि परिंदे देखने में कुछ बहुत ज्यादा साहिब शऊर मखलूक नहीं है, वजन के भी हल्के, चीजों में भी इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसिटी कॉम्प्लिस जैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंप्लिसिटी इनकी जिंदगी में। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इन पे भी गौर करने की तौफीक दी। और वो क्या है कि अगर तुम कहते हो कि हमें तो रब की पहचान ही नहीं किसी ने दी, तो तुम इन परिंदों से सीख लो। यानी आप कह सकते हैं कि हम परिंदों को उस्ताद बना लेते हैं। पहली चीज जो देखिए परिंदों की अल्लाह ताला ने यहाँ इनडायरेक्ट बयान की, वो ऊपर थी कि अल्लाह युसब सब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और तस्बीह से मुराद क्या होता है? तेजी से घूमना। तस्बीह जुबान से भी होती है और अमल से भी होती है। जुबान की तस्बीह वही है जो हमारे हाम मारूफ है, पढ़ना, जिक्र, अजकार, औराद। बाद लोग मोतियों पे पढ़ते हैं, मोतियों की तस्बीह पे पढ़ते हैं, बाद उंगलियों पे पढ़ लेते हैं। तो तस्बीह का एक मानिए कि जुबानी किसी की तारीफ बयान करना, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि तस्बीह अमल की क्या होती है, अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए जल्दी करना। अब परिंदे मखलूक हर एक कैसी तस्बीह करती है अल्लाह को पता है, लेकिन रिवायात से ये तक मिलता है कि दरवाजा जब खोलते हैं तो उसकी जो चिरचिराहट होती है ना, ये उस दरवाजे की उस लकड़ी की तस्बीह होती है। जी, परिंदों की ये जो सरसराहट की पर सॉरी पत्तों की जो सरसराहट है ना, ये पत्तों की तस्बीह है। हो सकता है ये अपनी जुबान में पता नहीं एक दूसरे को क्या क्या कहते होंगे। आप कुरान में ही पढ़ते हैं, आगे भी जाके पढ़ेंगे कि फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं। अब वो किस लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में, हमें नहीं पता, बस वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और इसी तरह से तस्बीह का जो सबसे खूबसूरत मानिया समझ आ रहा है कि अल्लाह ने इनको जो काम दिया है वो आसन दर्जे पे कर रहे हैं, बेहतरीन दर्जे पे वो काम करते हैं। तो गोया कि मखलूक मुस्लिम है, मखलूक अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द का मफहूम जानती है, उसको अच्छी तरह से पता है कि हमारा पैदा करने वाला, हमें पैदा करने वाला हमसे क्या चाहता है। इसलिए कि ऐसे लोगों को, ऐसों को कोई तासुब का अंधेरा नहीं है ना, इनको अल्लाह की बात मानना मुश्किल नहीं लगता। फिर दूसरी बात देखिए, साफात, صفے باندھتے ہیں. مسلمان صفے باندھتے ہیں, مانتے ہیں نا, اللہ نے حکم دیا. پوری سورت آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, سورہ صافات کے نام پہ. تو گویا کہ مماثلت دیکھیے کہ پرندوں سے اللہ نے صفے بنوانے کا کام کر دیا, تو مجھ سے اور آپ سے نہیں کرایا. ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے ٹریول کرنا ہے. پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ جب پرندے اڑتے ہیں تو یہ عام طور پہ ایک وی فارمیٹ میں چلتے ہیں. آگے سب سے ان کا لیڈر ہوتا ہے اور پیچھے ان کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ کس طرح سے چلتے ہیں کہ ایک آگے والا جدھر جائے گا سب اس کو لیتے ہیں. یہاں سے اصل میں نا جب آگے بات چل رہی ہے نا, وہ کیا ہے, اگلی آیتوں کا یہ قسم کا ذہن بنایا جا رہا ہے ہمارا. اور وہ کیا ہے کہ الاطاعت, لفظ لکھ لیجئے الاطاعت. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یہ چاہتا ہے نا کہ ہم اللہ کی بات مانیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ میں دنیا میں یہ ہم سے مت چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ایک ڈسپلن میں کام کریں. منافق جو ہوتا ہے نا, وہ کسی ڈسپلن کو برداشت نہیں کرتا. یہاں صرف ذہن بنا کے بات کر دی گئی کہ آپ پرندوں کو دیکھو کہ وہ کتنے آرگنائزڈ ہیں, کتنے ڈسپلنڈ ہیں, صفے بنا کے چلتے ہیں. پھر آپ دیکھیے مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, مسلمان تسبیح کرتا ہے وہ بھی تو تسبیح کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا اور وہ سب کا خالق اور مالک ہے. ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے لیے پرندوں کے اس ڈسپلن اور ان ساری باتوں میں کوئی خاص سبق نہیں ہے, اس رنگ میں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یہ اس کی ذرا سکرین کھولیے گا کہ ہمیں بس یہ پتا ہے کہ یہ اچھے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں, لیکن بظاہر اگر ہم دیکھیں تو پرندوں میں جتنی بھی خوبی ہیں جس کا یہاں ذکر ہے یا اس سے بھی زیادہ, انسانیت کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کوئی نہیں ملتا. ان کا اپنا ڈسپلن ہے, ان کی اپنی زندگی مطمئن ہے. لیکن اب اگلی آیتوں میں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اب ایک ایسی بھی مخلوق ہے اللہ کی کہ جن کا آرگنائزڈ ہونا اور جن کا ڈسپلن ہونا ہم انسانوں کے فائدے کا. اس کو پڑھ کے دونوں کو ساتھ پہ ٹیلی کریں گے. آیت نمبر 43 دیکھیے گا, الم تر ان اللہ, اچھا ایک چھوٹی سی بات رہ گئی یفعلون پہ, اس کو نوٹ کر لیجیے گا, واللہ علیم بما یفعلون, اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یفعلون کا لفظ جہاں آیا ہے, یہاں سمجھ لیں, آگے جا کے اشارہ کر دوں گی, دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں گی. پرندوں کی بات ہے نا پیچھے, تو یفعلون آیا, جبکہ عموماً انسانوں کی بات آتی تو کیا آتی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یعملون, عمل کی بات آتی ہے. کتنوں کو یہ سوال سمجھ آ گیا کہ پرندوں کے لیے لفظ آئے یفعلون, انسانوں کے لیے بات آتی ہے تو یعملون, اور درجے اور جزا اور سزا یفعلون پہ نہیں ہے, یعملون پہ. فرق کیا دونوں کا یہ نوٹ کر لیجئے. دیکھیے فعل عربی زبان میں جو لفظ نا فعل, اور ساری گرامر چلتی فعل فاعل اور مفعول پہ. فعل کہتے ہیں غیر ارادی طور پہ کسی کام کے ہونے کو. ٹھیک ہے, بس آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں سینگ, یہ فعل ہے, دل کا دھڑکنا, پلکوں کا جھپکنا, اس میں میرا آپ کا اختیار نہیں ہے, بہت روشنی ہو تو آنکھیں جھپک بند کر لیتے ہیں. جبکہ عمل کہتے ہیں ارادتن کسی کام کو کرنا, انٹینشنلی کرنا. بس اگر سینگ سی ٹو سی فیل ہے تو لک عمل ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری تسبیح کون سی ہونی چاہیے, یفعلونس بندلس 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 الحمدللہ, یہ تو فیل ہو گیا. ہماری کون سی ہونی چاہیے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہے, یعنی فیل عادتاً کچھ نیکیاں نہیں کرنی, بلکہ ہمیں وہ نیکیاں کرنی ہے کہ جو حقیقت میں ہماری زندگی میں خیر ڈال دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا ہم اس کی کوشش کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیے, ایک امیج آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیے یہ پرندوں کی فارمیشن ہے اڑتے ہوئے, یہ تصویر دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, ایک آگے پھر دو, تھوڑا سا فاصلہ ان سے برابر, پھر اس کے بعد دو, ہے دو دو, یا آ سکتا تھا نا تیسرا, نہیں آتا. کیوں نہیں آتے, یہ دیکھیں یہ وی فارمیشن ہے. کوئی بھی امیج دیکھ لیں آپ کو ان کے یہی فارمیشن دکھے گی. فرق کیا ان میں, یہ ان کا لیڈر ہے جس پہ انہوں نے اعتماد کیا. یہی امت مسلمہ کی کامیابی اور ترقی کا راز ہے کہ پہلے ایک لیڈر ہو, پھر اس کے پیچھے جو دو لوگ ہیں وہ اسٹرانگ لوگ ہوں, پھر اس کے بعد ان کو اپنا ڈسٹینس بتاؤ, جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈسٹینس پلیز. آپ دیکھ لیجیے یہ دو ہے, پھر یہ دو ہے, پھر یہ دو ہے. اس فارمیشن میں چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آگے سے جب ہوا آتی ہے نا सबसे ज्यादा मुश्किल जो पड़ती है ना वो इसको पड़ती है, जो बाहर बड़ा नुमाया हेल्दी स्ट्रॉन्ग परिंदा जो होता है ना वो सबसे आगे लगता है, क्योंकि हवा का जो प्रेशर इधर से आना है ना कमजोर होगा तो वो गिर जाएगा। ये वो शख्स है जिसको आप अबू बकर कह लें या उमर कह लें या उस्मान कह लें या अली कह लें। आज उम्मत को इस लीडरशिप की जरूरत है, और आज हमें अपनी जाती जिंदगी में भी इसी चीज की जरूरत है। हम इसको नहीं मानते, हम जमगट्ठा बने रहते हैं, हम भेड़ चाल बनते हैं, लेकिन हम फॉर्मेट नहीं होते। फिर आप देखिए कि ये दो दो लोग हैं, इस फॉर्मेशन में जब आते हैं ना तो हवा डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल आप यूं सोचे कि जैसे आप कर भी देख सकते हैं, पेडेस्टल फैन चलाएं और उसके आगे एक कागज है ना उसको यूं रखें, जैसे ये फैन है ना, तो आप इस फॉर्म में एक उसके आगे कागज रखें ऐसे, तो आप फील करेंगे ना कि जो हवा इधर से आ रही थी ना तो वो डिस्पर्स हो जाएगी, इधर उधर निकल जाएगी और इसके नीचे सुकून होगा। ये एक शेल्टर है, अल्लाह ताला ने इनको सिखाया या किसने सिखाया कौन जानता, कदाली मसला तो इनकी ये सब बंदी ये ऑर्गेनाइजेशन सिखाती है। फिर आपको एक प्रेजेंटेशन मेरे साइट पे मौजूद है, आप देखना चाहें तो देखिएगा कि बर्ड्स में अल्लाह ताला ने किस तरह की ताकत रखी कि इनमें से एक बीमार होता है तो वो जरा सा पीछे होता है तो इधर से भी एक जाके उसके साथ दो बन जाते हैं, बीमार को अकेले नहीं छोड़ते। देखा मैंने आपने प्रेजेंटेशन रमजान में दिखाया था इधर। फिर इसी तरह आप ये देखिए कि जब वो एक जाता है ना तो दूसरा उसकी जगह आ जाता है। यही हुक्म आज हमें मिलता है कि सफ बनाओ नमाज के लिए, पिछली सफ में ना खड़े हो जबकि अगली में जगह, किसी वजह से अगली सफ वाले का वुजू टूट जाए या वो नमाज कैरी नहीं कर सकता तो वो अपने नाक पे हाथ रख के यूं पीछे आता जाए, जो ही वो पीछे आए पिछली सफ से गुजरता हुआ पीछे जाए तो उससे पिछली सफ का एक बंदा उससे आगे चला जाए और वो दो मिल जाए। हदीस कहता है कि बेहतरीन कदम वो हैं जो सफ को जोड़ने के लिए, मुसलमानों की सफों को जोड़ने की कोशिशें आज के दौर की बेहतरीन कोशिश है। बिल्कुल उसी सब को मिलाने से ही आप लॉजिक ले लीजिए, आज उम्मत को जोड़ने की जरूरत है। टूटी हुई बिखरी हुई सफे आज मुसलमानों की 2.5 इंच की मस्जिद है, कैसे दुनिया में मुसलमान तरक्की करें, कर ही नहीं सकते। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला हमें यहां से सबक सिखाते हैं कि ये बेअकल परिंदों से सीखो कि दुनिया में काम कैसे करते हैं। आज जो भी लोग दुनिया में कामयाब हो रहे हैं वो भी इसी उसूल पे काम कर रहे हैं, याद रखिए। वो भी कोई डिसऑर्गेनाइज होते तो कभी भी काम ना कर पाते। अब अगली जो मिसाल है वो बादलों की है, इसको देखिए तो फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकती हैं। हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है, सिर्फ उसको डिस्कवर करने की जरूरत है। और ये जो तस्बीह करने की बात थी, सूरह बनी इसराइल की आयत 44 में भी हम पढ़ चुके हैं, वही मिन शई निल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ्कहून तस्बीहहुम। कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह और हम ना करें लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीह का शऊर नहीं है। बहरहाल आयत नंबर 43 को देखते हैं, अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा। इससे क्या मुराद होता है, गौर से देखो, देखने में क्वेश्चन है लेकिन इसमें रग़बत दिलाई जाती है, क्या तुमने नहीं देखा। अन्नल्लाह युस्जी सहाबन, कि अल्लाह हांक कर लाता है बादलों को, यानी अल्लाह की जात बादलों को इधर से उधर उधर से उधर लेकर आती है। कभी समंदर जहाज में सफर करते हो अगर विंडो से देखा हो तो आप इस आयत को बहुत इंजॉय करेंगे, कैसे समंदर के ऊपर बुहारात बनते हैं, फिर बुहारात ऊपर जाके बादल बनते हैं, फिर हवाएं चलती हैं, हजारों मील का सफर तय करके कहीं से कहीं मिल जाती हैं। अब जब समंदर पे बादल खड़ा होता है तो वो तो बहुत थोड़ा सा होता है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब अल्लाह सुबहान तआला की कुदरत होती है उसको जोड़ने की तो क्या करता है, थुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर वो उनको जोड़ देता है आपस में। युअल्लिफु का लफ्ज अल्लफ युअल्लिफु से है, जिससे लफ्ज उल्फत भी है, गम होती है ना जिसको आप कहते हैं स्टिकी गम या एल्फी कह लीजिए, या दो चीजों को जोड़ने वाली वो चीज है उल्फत, यानी उल्फत दिलों को जोड़ती है। पर इन बादल छोटी छोटी टुकड़ियों में होते हैं फिर अल्लाह उनको जोड़ता है, एक तेज चल रहा था तो हवा हल्की होती है वो जरा हल्का होता है, पीछे वाले बादल को अल्लाह हवा को जरा सा तेज करके दोनों को जोड़ता है, सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर इनको तह बतह कर देता है। कैसे लेयर्स लगी होती हैं हवाई सफर में, आप देखते हैं कि बादलों की तहें होती हैं, कभी बादल आपसे ऊपर होते हैं फिर आप बादलों के अंदर से जब गुजरते हैं जहाज में तो क्या फील हो रहा होता है, मुझे तो ऐसे लगता है मेरी रूह ऊपर जा रही है, और ऐसी जाएगी, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह तौफीक अल्लाह ताला आसानी का मामला हमारे साथ कर दे। फिर इसी तरह आप देखिए एक वक्त आता है जहाज से नीचे देखते हैं तो ऐसे लगता है कि दूध के ऊपर की सारी ही झाग है, और वो इतने बड़े बड़े बादल होते हैं, फिर जब जहाज वापस आता है तो भी ये कैफियत होती है। अल्लाह ताला कहते हैं फतरुल वद्क यखरुजु मिन खिलालिही, तो तुम देखते हो कि बारिश इनके दरमियान में से बरसती पड़ती है। पहले क्या था, सबसे बुखारात थे, फिर उसके बाद उसके अंदर से बादल बने, फिर आसमान पे गए, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको ये जो सहाबा ने साहिबा कहते हैं बादल को, यानी इनको अल्लाह ताला किस तरह से हांकता हुआ ले जाता है, और युसजी इस जाउन से, जैसे हांकना नहीं होता जानवर को हांका जाता है, हवा जो होती है ना वो एक किस्म की चाबुक का काम करती है, चलो आगे, बादलों को रुकने ही नहीं देती, चलती जाती है, मनो टनो पानी को यूं उठाकर हवाएं ले जाती हैं, फिर तह बतह होती हैं, और आप देखते हैं कि जब वो सारे क्लाउड इकट्ठे होते हैं एकदम उसमें से वदका बारिश निकलते हैं, मी बरसता है, वदक बारिश, सख्त बारिश को कहते हैं, यखरुज मिन खिलाल ही, उनके अंदर से बरसती है, ना वहां छलनी है कि उसमें से छन छन के पानी का एक कतरा आए, ना ऊपर कोई पानी की टूटियां लगी हुई है, कहां से उन क्लाउड्स में से पानी आ जाता है, वह युनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फीहा मिन बर्द, और अल्लाह आसमान से इसके अंदर के पहाड़ों से ओले बरसाता है, यानी जब बारिश जमा हो जाती है तो बाज दफा बारिश ओलों की शक्ल में बदल जाती है, ये जो बर्द है ना ये ओलों के लिए आता है, मिन जिबाल, जिबाल का लफ्ज यहाँ बादल के लिए, यानी ऐसे पहाड़ बने होते हैं बादलों के, और मुझे जैसे बाजू का दिखता है जैसे मोतियों के गुच्छे, और खास तौर पर जब सूरज भी पीछे से पड़ रहा हो, छन छन करती हुई चीजें, आज भी वो मंजर आंखों के सामने, अल्लाह जाने वो मंजर कभी दोबारा दिखेगा कि नहीं, कि जहाज इस तरह से मारा था ऊपर कि कहीं से सूरज उन बादलों के ऊपर पड़ रहा था, और मैं अपने ध्यान थी और बाहर जब नजर पड़ी तो एकदम जिस तरह कहते हैं ना कि चीख निकलने वाली कैफियत थी, मुझे फील हुआ कि गोल गोल पर्ल्स के गुच्छे हैं, मोती लग रहे थे, बिल्कुल बादल नहीं लगे, बादल तो यूं फैले होते हैं ना, वो यूं गुच्छे थे, गुच्छे पे गुच्छा, और उसमें से जो छन छन करती हुई रोशनी थी एकदम मैं हिल गई, मैंने मेरे साथ जो थे मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा देखें, तो उन्होंने फिर यही पढ़ा कि अल्लाह नूर समावाती वरात, बिलीव मी इतने साल पुरानी ये बात है, आज भी मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुझे फिर कभी अल्लाह दिखाए तो मैं ये मंजर देखूं, गौर करेंगे तो पता चलेगा कि थे बादल लेकिन गुच्छों की शक्ल में थे, सूरज की रोशनी उन पे ऐसे पड़ रही थी जैसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, पानी होता है ना अंदर तो वो रिफ्लेक्शन में यूं उसमें से रोशनी की तहें थी कि इंसान इमेजिन नहीं कर सकता दुनिया का कोई बल्ब ऐसा हो, और दूधिया कलर के मोती, अल्लाह कहते ये कौन करता है ये बताओ, चलिए बादल तो बरसे, फयुसीब भी मैं यशाओ, तो वो पहुंचाता है इन बादलों को जिस पर चाहता है, वह यसीफ अला मैं यशा, और इसका रुख फेर देता है जिससे चाहता है, अब ये अल्लाह की शान है, जिसकी खेती को बर्बाद करना मकसूद होता है अल्लाह वहां ओले बरसा देता है, हेलिंग होता है, हेल्स कहते हैं ना उसको, हेलिंग हुई बाद ओले पड़े वो सारी खेती बर्बाद हो गई, रातों रात सारी फसल खत्म हो गई, और जिससे अल्लाह का दिल चाहता है अल्लाह नहीं चाहते भी उससे रुख फेर देता है, बाद दफा पता चलता है एक खेत ओलों से बर्बाद हो गया, दूसरा खेत बिल्कुल करीब रहा ठीक रहा, बाद दफा बारिश एक जगह हो जाती है छन छन करती हुई तो वहां फसल उगाती है दूसरा खेत खुश्क रहता है, यकादुसना बर्की ही करीब है कि इसकी बिजली की गूंद यस्खबु बिलअबसार लोगों की आंखों को उचक ले जाए, यानी यही बादल, अब आप देखिए कि मल्टीपर्पज थिंग है, इसके अंदर वही बादल खैर भी देता है और वही बादल शर भी देता है, वही बादल लोगों के लिए खुशी का पैगाम भी लाता है, वही नुकसान का सामान भी बनता है, हमारे लिए इसमें क्या सबक है, हमारे लिए इसमें सबक है टीम वर्क का, अकेला एक अकेला दो ग्यारह, बस जब हम एक बहुत नेगेटिव जुमला बोलते हैं और इतना नेगेटिव के अंदर से खून जल जाए सुनने वाले का, और वो ये कुछ नहीं करेंगे, हमसे नहीं कुछ होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, और अगर कोई करे कहता है जी आपके इस करने से क्या होगा, अपनी जिंदगी से इस लॉस को डिलीट कर दें कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पीछे पड़ा के बहुत बड़ा चिराग ना भी जले तो छोटे छोटे चिराग जला दीजिए, बारिश का हर कतरा अगर ये सोचे कि मेरे एक छोटे से कतरे से क्या होगा तो क्या इंसानियत को बारिश मिले, इतने छोटे छोटे कतरे मिलकर इंसानियत को नफा देते हैं, तो लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, आसन तकवीन पे पैदा किया हुआ इंसान किसी को फायदा नहीं दे सकता, जितनी अल्लाह ताला ने आपको खूबियां दी हैं, जितनी नेमतें आपको दी है, क्या बादलों को दी है, परिंदों को दी है, जब वो पानी के फीके कतरे इंसानियत को बारिश दे रहे, तो मैं और आप क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे रहे? वजह यह कि इज्तमाइयत नहीं है। बादलों में इज्तमाइयत का सबक है, युअल्लिफु, और जो चीज बंदे को जोड़ती है वो उल्फत है, वो मोहब्बत है। जितना आपका दिल अपने साथियों से जुड़ा होगा, कोई किसी की बुराई करनी तो दूर की बात है, सुन भी नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं उसकी बात सुनूं, तब देखिए कि खैर फटकती है। और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, जिस टीम में और जिन साथियों के दिल आपस में जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे की बीमार तकलीफों को कह लीजिए या ऐबों को छुपाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उछालते नहीं है, वहां से बहुत खैर निकलती। कोई खूबी भी ना हो ना, अल्लाह उन लोगों से कोई काम ले ही लेता है। वजह ये कि उनके दिल जुड़े हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सहाबे करम है, रुहमा बैनहुम, इज्जत अल काफिरी, अशिद्दा उलल कुफार। सूरत मायदा और सूरत फतह को जमा कर लें, आपको सहाबा का किरदार खूबसूरत तौर पे अपने सामने नजर आएगा, कैसे अल्लाह ताला ने उनके दिल जोड़े हुए थे। कोई उनकी बात नहीं कर सकता। हजरत मुआविया और हजरत अली दो बड़े सहाबी थे, एक मौके पे इनकी जंग भी हुई, बहुत मारूफ जंग है कि जिस मौके पे किसी शख्स ने हजरत मुआविया को खत लिखा कि तुम कहो तो अली के खिलाफ फौजें भेजो, तो उसने फौरन खड़े होकर कहा कि देखो ये हमारा सियासी मसला है, अगर तुमने अली के खिलाफ बात की तो सबसे पहले तुम्हारा मुकाबला मैं करने आऊंगा। हजरत अली और हजरत मुआविया, जिनके नाम पे आज फिरके बन गए, वो आपस में एक दूसरे को कहा करते थे कि उम्मीद है कि हमारे दिल जो है ये आराफ के मुकाम पे साफ किए जाएंगे और हमारे दिलों से गिल और कजी निकाल दी जाएगी। ये उनकी मोहब्बत थी। जिस घर के घर वाले ही लड़ते रहे, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहे, वहां मेहमान आएगा तो उसको खुशी होगी, वहां के कामों में बरकत होगी। तो दिल जुड़ने ये असल काम है, और अल्लाह के नबी ने ये काम आसान दर्जे पे किया था, लोगों के दिलों को जोड़ा। और दिल कब जुड़ते हैं, याद रखिए गोल एक होता है, सेम गोल। आप फुटबॉल को ध्यान में रखिए, फुटबॉल का मैच होता है, 8-10 खिलाड़ी अगर हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं ना, तो आप देखिए कि सब एक ही तरफ जा रहे हैं ना। आप एक ही जगह दो बॉल फेंक देंगे वहां, तो क्या वो टीम जुड़ी रहेगी, पता ही नहीं चलेगा असल गोल कौन सा है। गोल मकसद की यकसानियत लोगों को मिलाती है, रास्ते फर्क है। आज मुसलमान मुख्तलिफ फोरम से काम करते हैं, मुख्तलिफ नामों से करते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, गोल एक हो। और गोल क्या हो, लियुज़हिरहुल दीन कुल्लिही, इस दीन इस्लाम को दुनिया पे छा जाए। आप किसी रंग में इस्लाम की खिदमत करते हैं, 100 दफा कीजिए, दिल जुड़े रहे। आज हमें दुश्मनों ने इस तरह तोड़ दिया कि ऊपर से कटे, ऊपर से तो 4 फिरकों में कटे, नीचे आके 40 फिरके बन गए, एक एक कटने की बातें। तो जब तक इज्तमाइयत नहीं होगी, फायदा नहीं होगा, खैर नहीं होगी। वही बारिश है, देखिए कतरे कतरे होते हैं, लेकिन जब वो एक खास टेम्परेचर से बढ़ जाते हैं, वो पत्थर बन जाते हैं, हेल हो जाते हैं, फिर वो पत्थरों की बारिश हो जाती है। यहां से इंतहा पसंदी से भी बचाया गया। ओले इस वक्त यहां मिसाल है कि जब मुसलमानों में इंतहा पसंदी आती है, एक्सट्रीमिस्ट, दीन के हुक्म पे इतने एक्सट्रीम। और आपको बताए कि ये जो खारजाइज थे, जिनको खारजी हम कहते हैं, ये इंतहा पसंद लोग थे। हजरत अली के साथ जुड़ने वाले अपने आप को शियाने अली के नाम पे लोग कौन थे, हद से बड़े हुए थे। तो हद से बड़ा हुआ तकवा भी नुकसानदेह होता है, खुद को नेक समझना बाकी सबको आग में, सब आग में मैं नेकी पे, ये नहीं हो सकता। और अपोजिट भी ठीक नहीं है, हर गुनाहगार को कहना पता नहीं वो कितना नेक है, ये फासिक तुम्हें क्या पता कैसी है, हो सकता है ये जन्नत में पहुंचे, अल्लाह ले जाए उसकी मर्जी है। तो याद रखिए, नेकी का वो मियार अल्लाह ने नहीं रखा कि जो नामुमकिन हो, सिर्फ 2-4 लोग मुआशरे के वहां पहुंच जाए और बाकी सब नाकाम। अल्लाह ने मॉडरेट रिलीजन दिया है। हमारे यहाँ 2 एक्सट्रीम्स हैं, नमाज रोजे को दीन से निकाल दो, सूद जायज कर लो, शराब खैर आज के दौर में होनी है, और दूसरा अपोजिट, सिर्फ नमाजें ही पढ़ते रहो और सिर्फ बस तुम यही करो और अल्लाह अल्लाह करो। इस्लाम दोनों में, देखिए रात और दिन, आना और जाना क्या सिखाता है, बी मॉडरेट। रात के बाद सुबह, सुबह के बाद रात, बीच में कितने मरीले आते हैं, उरूज और जवाल दुनिया है, खेल है। नबी सल्लम के बाद जब मुसलमानों में से ये बैलेंस चला गया तो बिगड़ गए। अभी मैंने पीछे लास्ट मंथ ही कहीं दर्स दिया याद नहीं का कि बैलेंस इन लाइफ, उसका यही मैसेज था कि आज मुसलमानों को अपना बैलेंस ठीक करना है। आपको शुगर हो जाती है जब आपकी शुगर का बैलेंस खराब होता है, आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, ये लोग हैं, जब आपका बैलेंस खराब होता है। वही बारिश जब बैलेंस्ड है तो इंसानियत के फायदे की, और वही बारिश हद से गुजरी कौमों को तबाह कर दिया, कौमे नूह पे क्या आया था? कोई सांप तो नहीं बरसे थे, बारिश ही हुई थी ना। तो लिहाजा हद से नहीं बढ़ना और कॉपरेशन सिखाया जा रहा है। आज के दौर में एक बहुत रिवाज है और वो क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, बड़े बड़े गैंग बने हुए, नेटवर्क है पूरा। कहते हैं क्राइम्स भी करो तो बड़े ऑर्गेनाइज होके करो, और अगर आपने कोई क्राइम करना है तो हमसे रब्ता करें। वो गैंग बनकर ऑर्गेनाइज क्राइम्स फैला सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेनाइज रिलीजन क्यों नहीं फैला सकते? हम खैर के लम्बार बरदार, हम नूर रखने वाले, अल्लाह नूर समावाद से दावे करने वाले, हम क्यों नहीं जुड़ते? अल्लाह के नबी की एक हदीस का खुलासा है कि यदुल्लाह ही फौकल जमा, अल्लाह का हाथ जमा इज्तमाइयत पर है। असल काम इसके सारी आयतें हमें ये सिखा रही हैं कि तुम देखो। फिर आप देखिए यकाद अलबर को यख्तफ अबसारहु, करीब है कि वही बिजली उनकी आंखें उचक ले। हर चीज के दो ही रुख होते हैं, या फायदा मंद होती है या नुकसानदेह होती है। आप और मैं अपनी सलाहियतों को पहचाने, हम चाहें तो अपनी सलाहियतों से अच्छे काम ले लें और हम चाहें तो अपनी सलाहियतों से बुरे काम ले। मिसाल देती हूँ सिर्फ एक, बाकी चीजों का आप खुद समझ लीजिएगा। आप देखिए कि गुस्सा अल्लाह ने रखा ना इंसानों के अंदर। कोई ये कहते मुझे गुस्सा नहीं आता, ये झूठ बोलता है। वो गुस्सा आएगा ये फितरी बात है, ये आना चाहिए। खिलाफ हक चीज को लेकर गुस्सा ना आना ये बुजदिली और नामर्दी है, ठीक है। अब गुस्सा आपके अंदर आया, आप कहते हैं हाय मेरे में गुस्सा क्यों है, हाय गुस्से वाली बड़ी हूँ, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा गुस्सा नहीं। आप इस गुस्से को अपनी फोर्स बनाएं। कैसे फोर्स बनाएं? आप इसको गलत चीजों के ऊपर इस्तेमाल करें, नाफरमानियों को करते हुए लोगों को देखे तो अपने अंदर गुस्सा लाए और कुछ काम करें। आप इस गुस्से को अपनी हॉर्स पावर बना लें। एनर्जी क्या होती है? गुस्सा ही तो होती है। आप देखिए कि गैसी गुब्बारा होता है तो उसके अंदर गैस होती है, तो आप जरा छोड़े वो ऊपर चला जाता है। तो गुस्सा आपके अंदर है, आप उसको अंदर रखकर जोश से काम करें। आपको बेहजाई देकर गुस्सा आए, आपको सूद का निजाम देकर गुस्सा आए, आप इसी निजाम के अंदर गुस्से में कोई काम कर लीजिए, अल्लाह आपसे कराएगा। हजरत उमर फारूक ने जब पहला खुतबा दिया था अपने खुद खलीफा बनने के बाद, उसमें यही कहा था कि लोगों आज के बाद उमर का गुस्सा और उमर की जो गैरत थी वो इंशाल्लाह नरमी में बदल जाएगी। अब वो दीन के मुतालिक इस्तेमाल होगा। उमर का गुस्सा हमेशा दीन का था। तो बात का खुलासा ये है कि दिल बदलते रहते हैं। इंसान के अंदर हिदायत का नूर भी आता है और कभी कभी जहालत के अंधेरे भी आने लगते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि तुम इस कायनात से अपने लिए सबक लेकर अपने आप को इंसानियत के फायदे का बनाओ, वरना याद रखो जाया हो जाओगे। फिर तीसरी मिसाल दी जा रही है रात और दिन की, आयत 44, युकल्लिबुल्लाहु लैल वन्नहार, अल्लाह अदलता बदलता है रातों और दिन को। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतल लिउलिल अबसार, यकीनन इसमें इबरत का सामान है आंखों वालों के लिए। ये रात और दिन का आना जाना क्या, बी मॉडरेट। कभी तुम्हारा ईमान ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी कुछ होगा, कभी कैसे होगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत है। फिर इसके बाद आप देखिए आयत 45 में, वल्लाहु खलका कुल्ल दाबतिन मिम्माइन, और अल्लाह ने बनाया हर जानदार को पानी से। अल्लाह ने कोई सोने से नहीं बनाया इंसानों को, चांदी से नहीं बनाया, पानी से बनाया। फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही, बाज ऐसे हैं जो अपने पेट पर चलते हैं। कौन से? रेप्टाइल्स, सांप और बिच्छू। टांगे वगैरह नहीं होती, पेट के बल नींदते रहते हैं। ये है इंसानों की वो किस्म जो बतन और फर्ज के गुजारे करते हैं। लिख लीजिए, यहां से इंसानों को असल में मिसालें दी जा रही हैं कि जैसे जानवर मुख्तलिफ किस्म के हैं ना, तो इंसान भी मुख्तलिफ हैं। इंसानों जानवरों में सबसे ज्यादा मोजी और खतरनाक जानवर यही होते हैं जो यमशी अला बतनिही, पॉइसनस होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। इंसानों में भी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पेट के लिए जीते हैं। सूरत मुल्क में आप पढ़ते हैं, फमे यमशी मुकिबन अला वजहिही मुस्तकीम, अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या वो जो अपने पेट के बल गिरा हुआ, यानी जिसको सिर्फ पेट और फर्ज और प्राइवेट पार्ट की फिक्रें लगी हुई है, क्या वो हिदायत पे या जो सीधा होके चल रहा है, ठीक है। तो ये बदतरीन इंसान है। ये भी वही तीनों देखेंगे जो अभी तीनों पे हमारा टॉपिक पूरा हो रहा है, नूर वाले, कुफर वाले और आगे निफाक वाले। खैर, दूसरे कौन से? फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही के बाद दूसरे कौन से? वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और इनमें से वो हैं जो दो टांगों पे चलते हैं। दो टांगों पे चलने वाले जानवर कौन से है? ये मतलूब है। आप देखिए दो टांगों पे कौन कौन से जानवर चलते हैं, मसलन मुर्गी, बतख और कबूतर, आप देखिए चिड़िया, परिंदे, परिंदे आप देखिए, पीछे भी परिंदों की मिसाल थी, यहां भी परिंदों की बात आ रही है। क्या पता चल रहा है कि अल्लाह सुबहान तआला में बताता है कि तुम जब ऊपर मुंह करके चलते हो, जब सीधे चलते हो ना, तो तुम्हें अल्लाह दिखता है। निगाह बुलंद रखो, ऊपर देखो। और चौथे कौन, तीसरे कौन से, वमिन्हु मन यमशी अला अरबईन, और कुछ ऐसे हैं जो चार टांगों पे चलते हैं। चार टांगों पे कौन चलते हैं? कैटल्स, अनाम, ठीक है, गाय भैंस बकरी, ये वो है। ये वो शख्स है जो ख्वाहिशों के लिए जीता है, जमीन की तरफ मुंह, नीचे मुंह मारना। आप देखिए जानवरों में कैटल्स दूध तो देते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी आदत अच्छी नहीं होती, हर वक्त जुगाली करते रहते हैं, जहां बैठे वहीं गंदगी डाल दी और खा लिया पी लिया और डकार लिया। सबसे अहम वो है जो यमशी अला रिजलैन, अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, किसी बड़े काम के लिए जियो, ख्वाहिश के लिए नहीं जीना। इमाम गजाली का एक कौल है कि जानवरों की तीन किस्में, एक वो है जो फायदेमंद है ना, जो हम सबको फायदा देते हैं, दूसरे वो है जो फायदा भी नहीं देते, नुकसान भी नहीं देते, और तीसरे वो जो नुकसान देते हैं, और तीनों आप जानते हैं, खुद ही लिख लो मिसालें। कहते हैं कि इंसान अगर तो इंसान नहीं बनता, तो कम अज कम जानवरों में से वो जानवर बन जो दूसरों को फायदा देता है। और आप खुद देख सकते हैं कि इसकी मिसालें कायनात में हमें कितनी मिलती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको सबक दे के फरमाते हैं, यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। यहां पे असल में टॉपिक पूरा हुआ है कुफर का। अभी तक कितने टॉपिक किए हमने इस लेसन के? दो किए, एक मोमिनों के, अल्लाह नूरु समावात से लेकर आगे तक, और फिर दूसरा कुफर की आयतों से कहा यहां तक। अब अगली जो चंद आयतें हमारे इस सबक में, और अगला पूरा का पूरा सबक, उसके अंदर बहुत सारे इशारे जिस गिरोह के लिए मिलते हैं उसको हम मुनाफिकीन कहते हैं। हमने सूरत यूनस से लेकर सूरत मोमिनून तक 14 मक्की सूरतों में मुनाफिकों का तذکرہ नहीं पढ़ा, क्योंकि मक्का में मुनाफिक नहीं थे, इसलिए ना मक्का में मुनाफिक थे ना निफाक था। मदीना में आने के बाद ये शोभा शुरू हुआ, और इसका आगाज अब्दुल्ला बिन उबई से हुआ, जिसको ख्याल शौक था कि मुझे लीडर बनाया जाए, और लोग तैयार भी हो गए थे औसर खजरज के उसको इज्तिमाई तौर पे लीडर बनाने में। लेकिन इतने में जब अल्लाह के नबी मदीना में आए, तो लोगों को आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज दिखी, तो उन्होंने उसको छोड़कर अल्लाह के नबी को अपनाया। ये था वो बीज जिसकी वजह से अब्दुल्ला बिन उबई के दिल में निफाक मौजूद हुआ, ऐसे ही लोगों का ग्रुप बन गया। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मौका दिया, और सूरत नूर आपको पता है कि तकरीबन 6 हिजरी में हो रही है, तो 6 साल तक काफी ज्यादा मुनाफिक मदीना की जमीन पर पैदा हो चुके थे। यहां उनका एक किरदार है, आयतों को इकट्ठा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर इसमें से बहुत सारी बातें थोड़ी इधर करूंगी, अगली अगले सबक में करेंगे, ताकि हम उस सबक को भी वेलस कर सकें। फरमाए, लकद अनजलना आयात मुबैजिनात, अलबत्ता तहकीक, हमने नाजिल की बैजिनात आयतें, खुली आयतें, रोशन आयतें हमने नाजिल की हैं। आपको लगता है कुरान ओपन है, क्लियर है, समझ आती है बातें? ये तो नहीं लगता पढ़ने के बाद समझ नहीं आता, करें क्या, चलो बरकत तो ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद क्या होता है, क्या सबको ये रोशन आयतें समझ आ जाती हैं और इनको समझ के लोग चल पड़ते हैं अमल करने? नेवर। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिराते मुस्तकीम, और अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहते हैं सीधे रास्ते की तरफ। इशारा है कि खुली किताब भी हर एक नहीं पढ़ता, सीधी सी बात है, तौफीक अल्लाह से मिलती है, और मिलती है उसको जो मांगता है तो उसको मिल जाता है। जिनको तौफीक नहीं मिलती उनका हाल क्या है? आयत 47 से 30, आयत 50 तक में, वह यकूलूना, और वो कहते हैं, कौन? वही लोग जिनके दिल नहीं खुले, आयातें बैजिनात सुनकर, बल्कि सूरत नूर सुनकर, ये भी तो बहीन ही है ना, सूरत नूर सुन के जिसका दिल नहीं खुला, अब उनके उजर और बहाने, वो यकूलून आमन्ना बिल्ला। कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, वो बिर रसूली, और जुबान से रसूल पर ईमान का दावा भी करते हैं, वह तो ना, और हमने इताअत कबूल की, यानी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिन्हुम मिन बादि ज़ालिका, फिर इसके बाद इनमें से एक फरीक पीठ फेर जाता है। कब फेरता है? लिख लीजिए, जब अमली तकाजे सामने आते हैं दीन के। देखिए दीन के मामले में कौलो फेल का तजाद निफाक कहलाता है, और ये नकज़े ईमान का सबब बनता है, ईमान चला जाता है इसकी वजह से। ईमान क्या है? अल ईमान अत तस्दीकु माल कबूली वल ईजान। ईमान है तस्दीक करना, कबूल करने के साथ और सर झुकाने का नाम। सिर्फ तस्दीक काफी नहीं होती, वरना तो अबू तालिब भी मुसलमान होते। ठीक है, अबू तालिब का कॉल आता है, लकद अलीम तो इन दीन मोहम्मद हक, मैं जानता हूं कि मोहम्मद का दीन सच है, लेकिन खानदान नहीं छोड़ता, इसलिए अमल नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग अमली तौर पे मुंह फेर जाते हैं। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, ये लोग मोमिन नहीं है, ये ईमान वाले नहीं हो सकते। अच्छा, आयत पे तो बात करेंगे। जो बिल मोमिनीन है ना, अगर ग्रामर की रोशनी में आप देखें ना, तो यहाँ बी मोमिनीन होना चाहिए था, अल मोमिनीन नहीं था। यहाँ लफ्ज अल होता खास, यहाँ लफ्ज था मोमिनीन, नकीरा थी। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ अल मोमिनीन क्यों कर दिया? अरबी जुबान का एक असूल याद रखिए कि खबर हमेशा नकिरा होती है, कॉमन नाउन होती है, खबर दी जा रही है कि ईमान वाले नहीं है। तो अल्लाह ने वहां अल लगाकर क्या बता दिया कि असल ईमान इनके अंदर ही नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि अल मोमिनीन की जगह भी मोमिनीन है, जैसे कि सूरत बकरा में हमने पढ़ा था, याद है वो क्या आती है उसमें आयत, मिन अन्नास मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। वहां बिल्कुल सीख सही था, बिमोमिनीन या मोमिनीन करके उनको मजीद रुसवा किया गया कि नकरा यानी आम तो आम, खास ईमान किसी किस्म का उनके पास नहीं है। खैर, पता कैसे चलता कि ये मुनाफिक है? आयत 48, वह इजा दू इल्लाही व रसूलिही, जब वो बुलाए जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। मुराद अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल, रसूल की तरफ। लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो इनके दरमियान फैसला कर दें। इजा फरीकुम मिनहुम मोरिदून, तो फिर एक गिरोह इनमें से मुंह फेरने वाला है। असल में इस आयत के ऊपर दो वाक्यात जो सूरह निसा में हम पढ़ चुके हैं, याद है आपको, बिशर तोमा बिन बिशर का, जिसने चोरी करके यहूदी पे इल्जाम लगा दिया था, और इसी तरह एक और वाक्य सूरह निसा में हमने पढ़ा था कि एक शख्स का झगड़ा था जमीन के साथ दूसरे के साथ, और अल्लाह के नबी ने फैसला यहूदी के हक में कर भी दिया, लेकिन वह उमर के पास चला गया। बाज मुफसरीन इस आयत के साथ वो वाकयात भी लाते हैं, कहते हैं कि यह इशारा वो है, लेकिन बात आम है, वो भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आम है। अच्छा, पहली बात क्या हुई कि जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इंसाफ के लिए बुलाया जाता है तो मुंह फेर जाते हैं। जबकि वही यकुल लहुमुल हक, अगर हक इनके लिए हो, यानी फैसला इनके हक में होने की उम्मीद हो, या तू इलैहि मुज़अनीन, तो वो आते हैं रसूल की तरफ सर झुकाते हुए। मुज़अनीन नया लफ्ज है आपके लिए, इसको समझ लीजिएगा, मुज़इन की जमा, मुज़इन। जाना कहते हैं वो शख्स जो इताअत करने के लिए तैयार हो, यानी सुपर रेडी टू ओबे। ठीक है, तो मुज़इनीन कौन शख्स है जो अपना सर डाल दे, जो बिल्कुल अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे डाल दे। मुराद क्या है कि मुनाफिकों की आदत है कि जब दीन पर अमल करने में उनको फायदा मिलना हो, तो बड़े ही भीगी बिल्लियां बनकर, नाइस सॉफ्ट बनकर इस्लाम में आ जाते हैं, और जब उनका जरा नुकसान हो तो मोरेदून होते हैं। आप कह लीजिए कि मोरेजून के ऑपोजिट यहां मोजेनीन आ गया। अल्लाह ताला कमेंट देते हैं, अफी कुलूबिहिम मरदुन, क्या इनके दिल में मर्ज है, बीमार है ये, क्या ये पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, सिक है ये, या फिर अमिरताब, दूसरा इनका मसला शक है। ये भी लिख लें आप 1 2 3 करके आयत के ऊपर ही, चार वजूहात हैं जिसपे शिर्क निफाक दिल में आता है, उसी का यहाँ तस्कर है। क्या इनके दिलों में बीमारी है, या फिर अमिरताब शक है, और शक सबसे बड़ी बीमारी है, अल्लाह ना करे किसी को दीन पे शक आ जाए, वो तो जाया हो जाएगा। तीसरा इनका ख्याल क्या है कि हम ये खाफ हो नहीं, या हीफ अल्लाह अलैहि व रसूलु, या इनको अंदेशा है कि अल्लाह और इसका रसूल इनके साथ नाइंसाफी करेगा। मुनाफिक का एक ये भी रोग है कि अल्लाह और उसके दीन की बात मानकर हम दुनिया में फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, हमारे रिश्ते नहीं होंगे, हम अल्लाह की बंदों की नजरों में बहुत ज्यादा नहीं होंगे, दिस एंड दैट। अल्लाह ताला कहते हैं ये तीनों ही बातें नहीं है, बात क्या है कि बल उलाइका हुमुल ज़ालिमून, बल्कि यही लोग जालिम है, ये झूठे लोग हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जुल्म की हद तक झूठे हैं। अब यहाँ पे सबक पूरा होता है, अगर आप देखें कि नूरु समावात में मोमिन की बात थी, वल्लज़ीना कफरू में काफिर की बात थी, और ये जो आखिरी हिस्सा है इसमें निफाक की बात है। थोड़ा सा इसको समझें, इसकी ज्यादा डिटेल्स अगले सबक में आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ इशारा है लेकिन बात आगे जा रही है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ईमान के अमली तकाजे ही ईमान वाला बनने नहीं देते। आप आज किसी भी नॉन मुस्लिम के पास जाएं, मुश्किल में है, परेशान है, बीमार है, दुखी है, कोई मसला है, आप उसे कहें तुम्हें एक वजीफा बताओ, ये तस्बीह पकड़ो, वजीफा लिख के दे देती हूँ अपनी जुबान में, तुम्हारी जुबान में, हिंदी इंग्लिश अरबी सब में लिख दें। वजीफा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जुमला तुमने 125,000 बार पढ़ना है तो तुम्हारा ये मर्ज दूर हो जाएगा, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है इनका क्या रद्द अमल होगा? वो उतनी ही खुशी से ये करने पे तैयार हो जाएंगे जैसे मजबूरी जब आती है, तकलीफ आती है, तो हम नॉन मुस्लिमों से जाके इलाज भी कराते हैं, दवाइयां भी खाते हैं, जैसे जिसकी मुसीबत होती है वो उसका तोड़ करता है। लेकिन जब एकदम वो इस लाइन पर उस पर अमल कराएंगे तो मोरी दून, तो बताइए कि उसमें और इस फिर मुसलमान में क्या फर्क है? वो बंदा जो अपने आप को इताअत के वक्त पीछे कर ले, क्या आप उसको अपना बंदा कहेंगे? ये नहीं हो सकता। इस रवैये पे हम अपने अगले सबक में बात करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह अगले सबक के खुलासे में कुछ चीजें निफाक की लिखाऊंगी। जैसे हमने इस सबक में ईमान के दर्जे और सिद्दीकीन और महजूबीन और मखदूमीन का पढ़ा, इंशाल्लाह अगले सबक में हम काफी चीजें निफाक की पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों से निफाक को दूर कर दे। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कोई सवाल आपका, कोई कमेंट, क्या महसूस किया इस सबक से आपने? जी आरफा, आपने क्या नोट किया? आसफा, आसफा और फिर उसके बाद आरफा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह करे कि ये टूट ही जाए। जी जी बात करें। हर सबक के बाद अपना आप टूटता हुआ महसूस होता है। आप कहते हैं कि जब किसी चीज को नए सिरे से बनाना हो तो उसको पहले तोड़ते हैं। हमारी एक खास ढांचे बन चुके हैं, अब अगर इसी के अंदर इस्लाम फिट करते हैं ना तो चीजें निकलती हैं। तभी तो हमसे हो ही नहीं पा रहा, रेनोवेट होता ही नहीं हमसे हमारा। लेकिन इसको आपने मैंने तोड़ना है, इस सोच से तोड़ना है कि इससे इंशाल्लाह ताला एक नया इंसान बनेगा। जी इधर से आप अरफा। यानी परिंदों से आपने सीखा सबक। जी पीछे से इधर से कौन बोलेगा? जी आप फरजाना। इंशाल्लाह ताला हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो, ये दुआ करके सोए रात को, और आप देखेंगे कि ये जीना फिर आपको एक नया जीना देगा। इधर से आप। जी सम्राट ने क्या सीखा आज के सबक से?
आज से भी तो फिर जितना भी लेक्चर हुआ, जितना भी सोच, मुझे सबसे चीज यही रहती कि अल्लाह ताला जब सिखा रहे हैं शायद वो टीम वर्क, ऑर्गेनाइज होना, नज्म और ज़ब्त, और क्योंकि अल्लाह ताला ने दिन रात कायनात उसी में ये सब मिलता है, तो उस अगर किसी जानवरों से सिखाने का जो अल्लाह ताला ने एक तरह से कि जानवरों से सीखो, अगर आप इंसान होकर अगर आप नहीं सीखते तो ये चीज मैंने
यदि दुनिया में भी वही कामयाब है जो ऑर्गेनाइज है और जो इन चीजों को सीखते हैं। एक दो कमेंट्स ऑनलाइन के भी पढ़ देती हूँ। ये कहती है कि मोमिन का हार्ट ब्राइट और एक्सेप्टेबल होता है, मुनाफिक और काफिर का दिल बंद और स्याह होता है। परिंदे भी इत्तेहाद और जमात जमीयत जमा मतलब परिंदों में भी इत्तेहाद होता है। पहले रब को माने फिर रब की माने। जी ये जरूरी है, कोई भी नेकी करने से पहले देखे कि वो आगे कबूल भी हो रही है कि नहीं। अपने आप को चेक करना है कि जब अमल के वक्त आते हैं तो मेरा क्या रवैया होता है। बिल्कुल, A big learning. Even everything like birds can give us so many lessons. Teamwork ke saath kaam karna hai, inshallah ta'ala. There are truly so much to learn from nature. Allah ta'ala designed it for us. Big reason. Yani Allah ne hamein kainat se bhi seekhne ka bana diya hai. To Allah ta'ala hamein seekhne wala bana de. Yahan pe hum break lete hain inshallah ta'ala. Namaz phir khana. Aur uske baad 1:03. Exactly bata dein khud hi kitna waqt aapko chahiye. 15 मिनट में दोनों काम हो जाएंगे. चले दिन का रोजा नहीं है वो खाना ले लें व्हाटएवर जो भी है. ठीक है जी 15 ये कह रही है इसको 20 पे करके तो हम लोग सबक लेते हैं. दुआ करें कि अगला सबक भी पूरा कर सके. इसी स्ट्रेच में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे. बहुत ही खूबसूरत सबक है. चलिए नमाज के लिए तैयार हो जाएं.